हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं आकांक्षा अब गुस्से से अपने नाखून चबाते हुए अपनी माँ के पास आई और बोली, अगर ये विपक्षी पार्टी भी झलक के पीछे नहीं है तो फिर कौन है? क्या आदित्य राणा? उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करवाई है। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो क्या झलक को आदित्य राणा प्यार करता है और प्यार से उसकी ज़िंदगी में आ रहा है? नहीं नहीं, मैं उस झलक की ज़िंदगी में इस तरह की खुशियाँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कभी भी नहीं। उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने मुझसे सिद्धार्थ को छीन लिया था और अब जब सिद्धार्थ मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा अमीर और ताकतवर इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बेरंग देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी आए, और अगर कोई अमीर और खूबसूरत इंसान किसी की ज़िंदगी में आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए। जिस तरीके से 500 करोड़ का नेकलेस खरीदकर उसके गले में पहना दिया गया, आप नहीं जानते कि सच में मुझे कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। मैं ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से से पैर पटकने लगी थी। नैना अपनी बेटी के गुस्से को अच्छी तरह समझ रही थी और बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करती। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सिद्धार्थ खुराना तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है। सिर्फ एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ता तुम्हारी शादी में। जिस दिन उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, उसी दिन शाम को ग्रैंड पार्टी में तुम्हारी शादी उससे होने वाली है। अब तुम्हें आदित्य या किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तभी आकांक्षा गुस्से से दांत भींचते हुए बोली, आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? जिस इंसान ने 200 करोड़ के नेकलेस पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो उसके लिए इतना कर सकता है, वो उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? आदित्य राणा को सड़क पर आ जाना चाहिए या फिर झलक उसकी ज़िंदगी में नहीं रहनी चाहिए। आकांक्षा की बात सुनकर नैना ओबेरॉय ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, उस लड़की का इंतज़ाम हम पहले ही कर चुके हैं। हमारे आदमी सिर्फ सही मौके की तलाश में हैं। जैसे ही सही मौका मिलेगा हम उसका अंत करवा देंगे। और वैसे भी हमारे आदमी का मैसेज आया था, 2 दिनों से वो उन्हें दिखाई नहीं दी है। वो ज़रूर आदित्य राणा के दिए हुए किसी फ्लैट या छोटे मोटे मकान में रह रही होगी। आखिर रखेलें इसी तरह रखी जाती हैं। तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, उसका इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगी। झलक नाम की मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे। हालांकि उसके दिल में तो ये भी आ रहा था कि काश ऐसा मौका मिल जाए और वो अपने हाथों से ही झलक का गला दबा दे। लेकिन फ़िलहाल वो देर नहीं करना चाहती थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। आखिर उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। उसने साइड में रखी अपनी ड्रेस को देखा और सोचा, दादी से मिलने के बहाने मेंशन चला जाए। ये सोचकर वो फटाफट खुराना मेंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी ओर दादी ने रणवीर से कहा, जो आदमी तुमने झलक को ख़त्म करने के लिए भेजे थे, अब तक उनका कोई मैसेज क्यों नहीं आया? आखिर वहाँ हो क्या रहा है? रणविजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप परेशान मत होइए, मैंने कहा ना, उसकी जान लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस हमारे आदमी को अभी तक सही मौका नहीं मिला है। ओबेरॉय ने अलग से रणविजय और उर्वशी के साथ मिलकर भी गुंडे भेजे हैं। इस वक्त दोनों ही तरफ के लोग मल्होत्रा मेंशन पर नज़र रखे हुए थे। चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाकर कुछ पता लगा सके। झलक कभी गार्डन में टहलती दिखाई देती, कभी जॉगिंग करती नजर आती, लेकिन अब तक उन्हें वो पूरी तरह अकेली नहीं मिली थी। इसी वजह से दोनों ही पार्टियों के लोग उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। झलक चाहती थी कि ये पूरा हफ्ता सुकून से गुजर जाए। धीरे धीरे उसने ऑफिस का काम फिर से संभाल लिया था। जो नया प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया था, उसी के अनुसार उसने सभी लोगों को उसमें लगा दिया था। उसे विश्वास था कि इसी प्रोजेक्ट के साथ उसकी कंपनी ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचेगी। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उसने बेहद शानदार तरीके से सारी कमान अपने हाथों में ले ली थी। वहीं आदित्य को 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन उसे झलक से ठीक से मिलने का मौका नहीं मिला था। ड्रीम प्रोजेक्ट के सिलसिले में वे रोज मिला करते थे, लेकिन इन दिनों आदित्य को अपनी राणा इंडस्ट्री भी संभालनी पड़ रही थी। इस वजह से वो थोड़ा उदास रहने लगा था। सभी ने उसकी उदासी महसूस कर ली थी। हालांकि आदित्य झलक से माफ़ी मांग चुका था, फिर भी उसके मन में कुछ खटल रहा था। तभी आदित्य के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और उसने अभय को कॉल करते हुए कहा, एक बात बताओ, तुमने अपनी गलती की माफ़ी क्या मिस मल्होत्रा से मांगी है या नहीं? ये सुनकर अभय जल्दी से बोला, नहीं, मैं तो उनसे माफ़ी नहीं मांग पाया। लेकिन सच बताऊं आदित्य भाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं मल्होत्रा मेंशन जा सकूं। मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर अपने गुस्से ऊपर उतार दें और मेरे इस हैंडसम से चेहरे का फिर से हाल खराब कर दें। आपने देखा नहीं मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। अभय की बात सुनकर आदित्य के दिमाग में झलक से मिलने का एक आइडिया आ चुका था। उसने मन ही मन सोचा, ये अच्छा मौका है मिस मल्होत्रा से मिलने का। वैसे भी 3 दिनों से वो झलक से नहीं मिला था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उसे फोन भी करना चाहता था, लेकिन झलक ने साफ साफ कह दिया था कि बार बार फोन करना, उसके पीछे घूमना और लव यू कहते रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो झलक उसे कभी पसंद नहीं करेगी। इतनी बात तो आदित्य उसके साथ रहकर अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि पूरे 3 दिन हो गए हैं उसने झलक को देखा तक नहीं है और वो अब उससे मले बिना रह भी नहीं पा रहा, तो क्यों ना आज ही मल्होत्रा मेंशन जाया जाए और अभय व कबीर को भी साथ ले जाया जाए, ताकि दोनों अपनी बदतमीजी के लिए झलक से माफी मांग सकें। वैसे भी हाल ही में सभी परिवार एक साथ अच्छे माहौल में समय बिता चुके थे, लेकिन अनामिका की हालत ठीक नहीं थी। वो काफी हद तक गुमसुम सी बैठी रहती थी, 3 दिनों से वो घर से बाहर भी नहीं निकली थी। झलक ने ये बात नोटिस की थी, वो समझ चुकी थी कि अनामिका अंदर ही अंदर परेशान है। अनामिका के दिल में कहीं न कहीं रणविजय के लिए गुस्सा भरा हुआ था। उसका मन करता था कि वो उसका गला दबा दे या उसे कोई कड़ा सबक सिखाए। उसे अपनी पसंद पर पछतावा हो रहा था, वो झलक से अपनी नफरत का इजहार भी कर चुकी थी। इसी बीच झलक ने अचानक कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, 5 मिनट में बाइक पर बैठना है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। ये सुनकर अनामिका चौंकते हुए बोली, लेकिन अब तो शाम का वक्त है, दादाजी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि कोई मेहमान आने वाले हैं तो हमें घर पर ही रुकना होगा, तो मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? झलक ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, डोंट वरी, तुम चलो मेरे साथ। अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, मेरा मूड कहीं जाने का नहीं है, मन कर रहा है कि बस घर में ही रहूं। ये सुनकर झलक ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे सब पता है तुम क्या सोच रही हो और क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे किसी भी दुश्मन के बारे में सोचकर परेशान हो, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
झलक की तेज आवाज सुनकर एक पल के लिए अनामिका सहम गई और बोली, अब तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगा है, चलो मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, क्यों बेकार में डांट रही हो, फिक्र भी ऐसे करती हो जैसे कि डांट रही हो। इतना कहकर अनामिका जल्दी से चेंज करके आई। झलक ने अपना हेलमेट पहना और अनामिका को अपने पीछे बैठा लिया, फिर वो फटाकट बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ी। उधर ओबेरॉय परिवार और खुराना परिवार के जो गुंडे झलक को खत्म करने के लिए लगाए गए थे, उन्होंने पहली बार झलक को मल्होत्रा मेंशन से इस तरह अकेले बिना सिक्योरिटी के बाइक पर निकलते देखा। ये देखकर उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने बिना देर किए अपनी अपनी गाड़ियों से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक गाड़ी में बैठे लोग दूसरी गाड़ी को देखकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे, आखिर इस लड़की के पीछे इतनी सारी गाड़ियां क्यों जा रही हैं? पहले उन्हें लगा कि शायद ये सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, लेकिन 3-4 दिनों तक झलक पर नज़र रखने के बाद वे उसकी सिक्योरिटी को अच्छी तरह पहचान चुके थे, ये गाड़ियां सिक्योरिटी की नहीं थीं। तुरंत ही दोनों पक्षों ने बिना एक दूसरे को कुछ बताए झलक का पीछा करना शुरू कर दिया। झलक तेज़ रफ्तार से बाइक चला रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि झलक उसे आखिर कहाँ लेकर जा रही है। करीब 1 किलोमीटर दूर आने के बाद झलक ने एक सुनसान सी जगह पर बाइक रोक दी। जैसे ही बाइक रुकी, अनामिका ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वहां खाली सड़क के अलावा कुछ भी नहीं था, हवा की आवाज़ और हल्का अंधेरा ही उस जगह की गवाही दे रहे थे।